नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एलन मस्क ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें ट्विटर के लिए एक नया सीईओ या एक्स कॉर्प मिल गया है। ट्विटर के सीईओ को अब इसी नाम से जाना जाता है। उन्होंने नए सीईओ का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि वो एक महिला है और लगभग 6 सप्ताह में काम शुरू कर देंगी। मस्क ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद खुद इसे संचालित कर रहे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो कंपनी के स्थायी सीईओ नहीं है। अरबपति कारोबारी और टेस्ला के प्रमुख ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी भूमिका ट्विटर के कार्यकारी चेयरमैन और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में बनी रहेगी। मस्क लगभग 6 महीने से कह रहे थे कि वो ट्विटर के लिए एक नया सीईओ तलाश रहे हैं। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे टूटकर 82.12 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की कमजोरी और विदेशी पूंजी की लगातार आवक के चलते रुपए की गिरावट सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.11 पर कमजोर रुख के साथ खुला और फिर अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 82.12 पर आ गया। रुपया बृहस्पतिवार को डॉलर के मुकाबले 82.09 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04% गिरकर 101.83 अंक पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.59% गिरकर 74.54 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 244.01 अंक टूटकर 61,660.51 पर था। एनएसई निफ्टी 77.95 अंक गिरकर 18,219.05 पर आ गया। सेंसेक्स के शेयरों में लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक और आईटीसी में गिरावट हुई। दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और टाइटन बढ़त में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शिंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में कारोबार कर रहे थे, जबकि जापान का निक्की लाभ में था। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को लाल निशान में बंद हुए। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 837.21 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने फरवरी माह में कुल 19.8 लाख मोबाइल उपभोक्ता जोड़े, जबकि इस अवधि में वोडाफोन आइडिया के 20 लाख ग्राहक कम हो गए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने बुधवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी। इसके मुताबिक देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने फरवरी में सबसे ज्यादा लगभग 10 लाख उपभोक्ता जोड़े। इसके साथ ही इसके कुल उपभोक्ताओं की संख्या जनवरी के 42.61 करोड़ से बढ़कर फरवरी में 42.71 करोड़ हो गई। फरवरी के महीने में भारतीय एयरटेल के 9.82 लाख उपभोक्ता बढ़े और उसके कुल उपभोक्ताओं की संख्या 36.98 करोड़ हो गई। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के 20 लाख उपभोक्ता कम हो गए और उसके कुल उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 23.79 करोड़ रह गई। विज्ञप्ति के अनुसार कुल ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या जनवरी अंत के 83.918 करोड़ से 0.02% बढ़कर फरवरी अंत में 83.933 करोड़ हो गई। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के कुल बाजार में शीर्ष 5 सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी 98.38% रही। ट्राई ने कहा, इन सेवा प्रदाताओं में रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और एट्रिया कन्वर्जेंस शामिल हैं। कुल वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या जनवरी के 114.3 करोड़ से 0.09% घटकर फरवरी में 114.1 करोड़ उपभोक्ता रह गई। जय भारत मारुति ने बृहस्पतिवार को कहा है कि वो हरियाणा और गुजरात में अपनी प्रमुख ग्राहक मारुति सुजुकी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों क्षेत्रों में 2 विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। कंपनी इसके तहत चरणबद्ध तरीके से 300 से 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने बयान में कहा, ये संयंत्र हरियाणा में सोनीपत के खरखौदा और गुजरात में SMG सप्लायर्स पार्क में स्थापित किए जाएंगे। जय भारत मारुति ने कहा, सोनीपत में नए संयंत्र से क्षमता बढ़ेगी, जिससे IMT खरखौदा स्थित मारुति सुजुकी के नए विनिर्माण संयंत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये विनिर्माण संयंत्र वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू हो जाएगा। जय भारत मारुति ने कहा, कंपनी वाहन तैयार करने के लिए पुर्जों की आपूर्ति के लिए गुजरात में नई इकाई में वाहन तैयार करने का संयंत्र भी स्थापित करेगी। ये JBM समूह और मारुति सुजुकी की संयुक्त उपक्रम है। जय भारत मारुति लिमिटेड 2.6 अरब डॉलर के JBM समूह की प्रमुख कंपनी है। कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के लिए वाहनों के कलपुर्जे बनाती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी रिटर्न की स्वचालित जांच के लिए एक मॉड्यूल जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि ये मॉड्यूल केंद्र प्रशासित करदाताओं के माल एवं सेवा कर संबंधी रिटर्न की खुद ब खुद जांच करने में अधिकारियों को सक्षम बनाएगा। इन करदाताओं का चयन डेटा विश्लेषण और मापे गए जोखिम के आधार पर किया जाएगा। इस मॉड्यूल में कर अधिकारियों को ये दिख जाएगा कि किसी जीएसटी करदाता की तरफ से दाखिल किए गए रिटर्न में किस तरह के जोखिम और उनमें खामियां मौजूद हैं। कर अधिकारी जीएसटीएन कॉमन पोर्टल के जरिए इन खामियों से अवगत करा पाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि स्वचालित रिटर्न जांच मॉड्यूल को वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी रिटर्न की जांच के साथ शुरू कर दिया गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।